अजहुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे भजहुरे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे नंदन अभय चरण रविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे करहु हे भव सिंधु रे शीत आतप वातवरी चन यदि नयामिनी जाहि रे वरी चन यदि नयामिनी जाहि रे विफल से विनो कृपन दुर्जन विफल से विनो कृपन दुर्जन चपल सुख लागिरे ये धन यौवन पुत्र परिजन देखि आछे परातीति रे यौवन पुत्र परिजन देखि आछे परातीति रे कमल दल जला जीवन तलमला कमल दल जला जीवन तलमला भजहु हरि पद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे मन श्री नंदनंदन अभय चरण रविंद रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय एक श्लोक क्रमांक 17। भयं प्रमत्तस्य वनेष्युपेस्या यतस्य आस्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रिया यस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्यम्। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या यतस आस्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रिया यस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्या। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या यतस आस्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रिया यस्य आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्यम्। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या यतस्य आस्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्यम्। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या यतस्य आस्ते सह षट् सपत्न्या जितेन्द्रिया यस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्यम्। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्या यतस्य आस्ते सह षट् सपत्न्या इन्द्रिय आत्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रम किं नु करोति वद्यम्। शब्दार्थ भयम् भय, प्रमत्तस्य मोहग्रस्त का, वनेषु वनों में, अपि भी, स्यात् होना चाहिए, यत् क्योंकि, स वह जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, स्यात् होना चाहिए, यत् क्योंकि, स वह जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है, आस्ते रहता है, सह साथ, षट सपत्ना छह सपत्निया, जितेन्द्रियस्य इंद्रियों को जीतने वाले का, आत्मरते आत्मतुष्ट बुधस्य ऐसे विद्वान का, गृह आश्रम गृहस्थ जीवन, किम क्या, नो निसंदेह करोति कर सकता है, अवद्यम क्षति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद, जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेन्द्रियों इन छह सपत्नियों के साथ रहता है। किंतु गृहस्थ आश्रम आत्मतुष्ट इंद्रिय जीत विद्वान को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता। तात्पर्य, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, गृहे वा वने ते थाके हा गौरांग बले डाके। चाहे कोई वन में रहे या घर में, यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में लगा हुआ है तो वह मुक्त पुरुष है। यह भी इसी को दोहराया गया है, यदि इंद्रियों को वश में नहीं किया गया तो वन में जाकर योगी बनना निरर्थक है, चूंकि उसके साथ अनियंत्रित मन तथा इंद्रिया रहती है, इसलिए गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में रहने पर भी उसे कुछ लाभ नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत के ऊपरी भागों के वनिक जन बंगाल जाया करते थे, अतः एक परिचित कहावत है, यदि आप बंगाल जाते हैं तो भाग्य आपका पीछा करता है। अतः हमारा पहला कर्तव्य है कि हम इंद्रियों को वश में रखें, किंतु वे बिना भगवत भक्ति के वशीभूत नहीं होती। अतः हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों को लगाना, भगवान की सेवा में विशुद्ध इंद्रियों का लगना। यहां पर श्री ब्रह्मा जी यह इंगित करते हैं कि इंद्रियों को वश में किए बिना वन में जाने की अपेक्षा श्रेयस्कर होगा कि उन्हें भगवान में संलग्न किया जाए। गृहस्थ आश्रम ऐसे आत्मजयी पुरुष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, उसे सांसारिक बंधन में नहीं डाल सकता। श्री रूप गोस्वामी ने इस स्थिति को आगे स्पष्ट किया है, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। यदि कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की भक्ति में लगा रहता है तो उसे मुक्त पुरुष मानना चाहिए। श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, फिर भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वह अद्वितीय है। श्री प्रबोधानंद ठाकुर का कथन है, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दृष्टा दृष्टान्यते। ज्ञानेन्द्रिय हमारी परम शत्रु है तथा उनकी तुलना विषधर सर्पों से की गई है, किंतु यदि विषैले सर्प के विषदंत निकाल लिए जाए तो वह डराना नहीं रह जाता। इसी प्रकार यदि इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हो तो उनके कार्यों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्त तो इस जगत में भ्रमण करते हैं, किंतु उनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, इसलिए वे इस जगत में सदा विलग रहते हैं, वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। लॉकडाउन के बाद सब भक्तों के संग में दूसरा क्लास। मैंने सोचा था कि बस एक दो भक्त सामने रहेंगे, इसलिए मैंने क्लास स्वीकार किया। ज्यादातर मैं राधे शंभू के सामने बोलना पसंद नहीं करता, प्रभु जी बहुत प्रगत भक्त है। जो भी हो, जो भगवान की इच्छा होती है उनके सामने कुछ चलता नहीं। तो हम भक्तों से सीखते हैं और भक्तों के सामने ही उसका पुनरुच्चार करते हैं। तब मैं भक्त सब भक्तों से याचना करता हूं कि आप मेरे पर कृपा करें, मैं कुछ इस श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास करूं और विशेष रूप से राधे शंभू से प्रार्थना करता हूं। तो यहां पर बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, महाराज प्रियव्रत का चरित्र का वर्णन। हम जानते हैं कि स्वामी मनु के दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं, महाराज उत्तानपाद, महाराज प्रियव्रत, आकुति, प्रसूति और दिहूति। तो इसके पहले हमने उत्तान महाराज का चरित्र देखा और उनके लड़कियों का भी चरित्र देखा। अब हम पांचवें स्कंद में हम महाराज प्रियव्रत का चरित्र देख रहे हैं। भक्तों ने हमको बताया है कि किस तरह आज हम जो श्लोक में पढ़ रहे हैं, ये प्रसंग कैसे आया है कि अभी मनु महाराज 50 साल के हो गए हैं। अभी उनका 50 साल मतलब पृथ्वी के साले 16.5 करोड़ वर्ष, क्योंकि उनका जीवन काल 33 करोड़ वर्ष का है। हर मनवंतर 33 करोड़ वर्ष का होता है, तो हमारे समझ के परे। तो और यहां पर यह भी बताया गया है कि महाराज प्रियव्रत ने 110 करोड़ वर्ष राज्य किए। कोई भौतिकवादी जो सुनेगा तो विश्वास नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? पिताजी की आयु 33 करोड़ वर्ष है और बेटा 110 करोड़ वर्ष राज्य कैसे कर सकता? तो इसलिए अधोश्रद्धा, आध्यात्मिक विषय समझने में श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता होती है। तो यहां पर प्रियव्रत महाराज के ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है। ये ब्रह्मचारी है और नारद मुनि जैसे गुरु के संरक्षण में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और भक्ति का आनंद में है, और परिस्थिति ऐसी आई है कि अभी उन्हें उनके पिता ही चाहते हैं कि आप घर वापस आके राज्य संभालो, राज्य संभालना है तो विवाह करना पड़े। अभी हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री तो सन्यासी होके भी राजा बने हैं, लेकिन उस समय प्रियव्रत महाराज ने ऐसा निर्णय नहीं लिया कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और चक्रवर्ती सम्राट भी बनूंगा, है ना? क्योंकि इनका राज्य कितना साल रहेगा कुछ पता नहीं, इनको तो कई हजारों लाखों साल राज्य करना था। इसलिए उनको समझ में आ गया कि अभी मेरे गुरु महाराज, मेरे पिताजी मेरे पास आए, मतलब मुझे अभी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना होगा। और गृहस्थ आश्रम, जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वो जानता है कि जो वैरागी का जीवन है वो भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। इसलिए जो व्यक्ति एक नारद मुनि जैसे गुरु के मार्गदर्शन में अगर ब्रह्मचारी व्रत और भक्ति करता हो तो साधारणतः वह गृहस्थ आश्रम में जाने की इच्छा नहीं करेगा, और ब्रह्मचारी रहते हुए उनको हजारों हजारों साल बीत गए तो अभी वो इच्छा उनकी नहीं थी। लेकिन उनके पिताजी सोच रहे थे कि अभी मुझे भी, मेरा अभी 50 साल हो गया है, मुझे भी वन में जाना है, वानप्रस्थ लेना है, और राज्य चलाने के लिए उत्तान महाराज का जो वंश है वो भी अभी नहीं है, इसलिए वो उनके पास गए हैं। तो एक तरफ गुरु है वो भी महाजन है नारद मुनि, और पिताजी भी महाजन, अभी दो महाजन के बीच में प्रियव्रत महाराज, वह विश्वास था कि नारद मुनि मुझे बचा लेंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने देखा कि समस्या थोड़ी जटिल है, दो महाजनों के बीच का मामला है और दोनों ही मेरे ही पुत्र है, बड़े शक्तिशाली है, इसलिए मुझे ही जाना होगा, तो फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उस स्थान पर आते हैं जहां पर प्रियव्रत महाराज है। और फिर अभी जो प्रसंग जो श्लोक चल रहे हैं, यहां पर ब्रह्मा जी महाराज प्रियव्रत को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए, और सबसे पहले बताते हैं कि यह भगवान की इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं, भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान हमेशा चाहते हैं कि जो भी चक्रवर्ती सम्राट हो वो उनका भक्त हो, वो जितेंद्रिय हो, जो आत्मज्ञानी हो, उसे क्या होगा, यदा यदा आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव इतरह जना। अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट या नेता या राजा मेरा भक्त है और वो जितेंद्रिय है तो वो अपने उदाहरण से संसार को भी बता सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा थी कि महाराज प्रियव्रत भी राज्य संभाले। तो इस तरह सबसे पहले बताते हैं कि ये भगवान की इच्छा है, इसलिए आपको स्वीकार करना चाहिए। अभी भगवान की इच्छा है ये जब नारद मुनि समझ जाते हैं तो नारद मुनि चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद मुनि के पिताजी भी है और गुरु भी है, दोनों है। तो अभी गुरु और पिताजी एक ही व्यक्ति है तो उनका वचन टाल नहीं सकते। और ब्रह्मा जी द्वितीय स्कंद में बताते हैं नारद मुनि को कि हे नारद, मैंने भगवान के चरण कमल की जो शरणागति बहुत अच्छी तरह से ली है, इसके कारण मेरे वचन कभी असत्य नहीं होते और मेरी इंद्रिया और मन कभी माया में नहीं जाती। तो नारद मुनि ने पहले ही सुना है अपने गुरु महाराज से, और ब्रह्मा जी का जो पद है नारद मुनि जानते हैं कि ब्रह्मा जी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कि ऐसे ही प्रियव्रत महाराज को मनाने के लिए बोल दिया कि भगवान की इच्छा है। तो इस तरह नारद मुनि जब सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से, अपने गुरु से, पिताजी से, तो उनको समझ में आ रहा है कि ठीक है कि हालांकि ब्रह्मा जी मेरे शिष्य को गृहस्थ आश्रम में या बड़े राज्य को संभालने के लिए बोल रहे हैं, साथ ही साथ ये आश्वासन भी दे रहे हैं, ये भगवान के वचन को दोहराते हुए कि तुम्हें राज्य संभालते हुए कोई कठिनाई नहीं आने वाली। तो नारद मुनि समझ गए मेरी एक ही इच्छा है कि भगवत भक्ति में लगा रहे, है ना, भगवत भक्ति से च्यूत ना हो या भगवत भक्ति से अलग ना हो। अगर ब्रह्मा जी वचन दे रहे हैं भगवान का प्रमाण देते हुए तो मुझे डरने की बात नहीं है। राधा कुंज बिहारी जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताय की, बहुपाद की। तो नारद मुनि समझ गए कि अपने बस राधा रामचंद्र की जाए। तो नारद मुनि ने देखा कि मेरे शिष्य की भक्ति में वादा आने वाले नहीं है, अगर भक्ति में वादा आने वाली है तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, है ना। तो यहां पर प्रियव्रत महाराज का सौभाग्य है कि उनको भगवान से ब्रह्मा जी जो कि उनके दादाजी है उनसे आश्वासन मिल रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के बावजूद भी मेरा मन और मेरी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे रहेंगी। जैसे हम देखते ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी कि ध्रुव महाराज कड़ी तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त कर लेते, और भगवान को साक्षात जब देखते हैं तो बोलते हैं कि काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम, कि भगवान मैंने आपका दर्शन किया, आप रत्न के समान है, और मैं आपके पास आया हूं भौतिक इच्छा लेकर कांच के टुकड़े मांगने के लिए। लेकिन भगवान फिर भी बोलते हैं कि ध्रुव चिंता मत करना, मैं फिर भी तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनाऊंगा। नहीं नहीं मुझे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना है, मुझे तो आपकी प्राप्ति, अभी मुझे आपके साथ ही रहना है। नहीं चिंता मत करना ध्रुव, तुम्हारे मन और तुम्हारी इंद्रिया मेरे ही स्मरण में और मेरी भक्ति में लगी रहेंगी। तब ध्रुव महाराज को थोड़ी आश्वासन मिल जाता है, थोड़ा अभय प्राप्त होता है कि मैं राज्य करूंगा फिर भी भगवान की भक्ति में लगा रहूंगा। तो भगवान की भक्ति में लगे रहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हमें अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी आती है, तो अगर हमारे वरिष्ठ हमें कहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप भक्ति में लगे रहेंगे, तो फिर समस्या की कोई बात नहीं है। कई बार प्रभुपाद जी भी अपने शिष्य को बोलते कि आप इस एरिया में जाइए और उस भाग में जाइए। तो शिष्य बोलता था प्रभुपाद जी फिर मैं मेरा भक्ति का क्या होगा, चिंता मत करना मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो ऐसा हुआ भी है ना, जब सुदामा महाराज को जापान भेजा गया थोड़े समय के लिए विचलित हो गए, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको आश्वासन दिया था कि मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करूंगा। और जब उनका मृत्यु नजदीक आया तो प्रभुपाद जी उनको लेने आए। तो भक्ति मार्ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है कि हमें वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त रहता है, और वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें प्राप्त रहे तो हमें फिर ज्यादा डरने की बात नहीं। हमारा हम भय प्रकट कर सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, और वरिष्ठ को देखते हैं कि ठीक है जो बोल रहा सही है, तो कभी कभी उसको जिम्मेदारी नहीं भी दी जाती। लेकिन कभी कभी व्यक्ति नम्रता के कारण भी कोई पद स्वीकार नहीं करना चाहता। जैसे मोहन बाबू है, और वो महाराज चाहते थे कि वो दिल्ली के अध्यक्ष बने, लेकिन वो नम्रता के बारे में मैं महाराज नहीं, इधर तो इतने सारे वरिष्ठ शिष्य हैं, मैं कैसे, मुझे लगता है कि मैं ये पद स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाराज की इच्छा थी कि वो अध्यक्ष बने, महाराज चाहते थे कि मंदिर का अध्यक्ष अगर ब्रह्मचारी रहे, अनासक्ति व्यक्ति रहे, तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है ना। तो फिर महाराज कार में बैठे वृंदावन जाने वाले थे, तो मोहन बाबू महाराज को छोड़ने के लिए आए। तो महाराज, गुरु महाराज ज्यादा फोर्स नहीं करते, लेकिन ऐसा कुछ उदाहरण देते हैं कि वो व्यक्ति स्वीकार कर लेते। तो उन्होंने बोला मोहन बाबा आप जानते हैं कि प्रभुपाद जी का आंदोलन कैसे बढ़ा, महाराज बताइए, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद को शत प्रतिशत शरणागत थे। प्रभुपाद जी हमको जो भी कहते थे हम तुरंत मान लेते थे, हम मना नहीं करते थे। प्रभुपाद जी बोले कि आप अमेरिका जाओ, आप रशिया जाओ, आप चीन में जाओ, हम मान लेते थे। तो मोहन बाबू समझ गए महाराज क्या करना चाहते। तो फिर महाराज वृंदावन चले गए, मोहन बाबू बोले महाराज को, महाराज ठीक है मैं आप अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं। तो कभी कभी नम्रता का कारण भक्त कोई पोस्ट पोजिशन लेना नहीं चाहता, लेकिन गुरु अपने उदाहरण से प्रस्तुत करते हैं कि किस तरह हमें शरणागति लेकर कई बार जो हमें पसंद नहीं वो जिम्मेदारी लेना होता है। मैं कई बार डरता हूं जिम्मेदारी लेने के लिए, और अभी तक तो महाराज ने मेरा हृदय जान के मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी नहीं दी है, अभी आगे भविष्य में पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं कोई भी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए डरता हूं, क्योंकि वैष्णव के सामने बोलना उसमें कुछ समस्या नहीं है। इसलिए अभी तक मैंने 20 साल में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं ली। अपना भगवान बालाजी का मंदिर है, वही बहुत सारे भक्त उसमें सेवा कर रहे हैं, और छोटी मोटी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बस। उधर ही बहुत सारे भक्त सेवा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं शुरुआत में जब मैंने बालाजी की जिम्मेदारी लिया था तो ब्राह्मण दीक्षित भक्त सेवा कर रहे थे, तो ज्यादा भक्त नहीं थे वहां। उस समय तो मैं राशम के पास गया, प्रभु जी मुझे सेवा करना कठिन जा रहा है, क्यों बोले मैं बहुत सारे ब्राह्मण दीक्षित सेवा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि राधा कुंज बिहारी मंदिर की भी जिम्मेदारी है और बहुत सारे ब्राह्मण दीक्षित नहीं है। राशम ने मेरा मन को जान लिया, बोले ठीक है कल से हम बालाजी की सेवा प्रथम दीक्षित भक्तों से करेंगे। तो 3-4 महीने के बाद ही फर्स्ट इनिशियल ड्यूटी सेवा करना चालू कर दिए। लेकिन फिर तब से मैंने सोचा कि जब बालाजी नए मंदिर में जाएंगे तो वहां तो फिर वो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, तो मैंने कैनवासिंग करना शुरू कर दिया, बहुत सारे भक्तों को लिया, गृहस्थ भक्तों को जमा किया, फिर उनका भक्ति शास्त्री शुरू किया, उनका ब्राह्मण दीक्षा वगैरह करके एक टीम को मैं तैयार कर लिया। कुछ समय मुझे मिल गया था। तो इस तरह, लेकिन जब हम प्रवचन में बोलते हैं मुझे डर लगता है कि प्रवचन में बोलने से कई भगवान कृष्ण मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी न डाल दे, कहीं महाराज को फोन ना आ जाए कि बहुत सारा बात बड़ा बड़ा बात आपने किया है प्रवचन में बोल के, अभी ये जिम्मेदारी आप ले लो। ठीक है, अगर महाराज की इच्छा है और शक्ति हमको मिलती है तो हम जिम्मेदारी को बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वास्तविकता मुझे डर लगता है बड़ी जिम्मेदारी लेने का हमेशा। मेरे आशाबू ने मुझे कई बार बोला था आप मैनेजर बनो, आप टीएमसी बनो, मैं बोला प्रभु जी मेरे से नहीं होगा, कठिन लगता है मुझे, लेकिन कभी प्रभु जी ने मुझे फोर्स नहीं किया। तो जो भी हो, तो यहां पर आज के इस श्लोक में बताया गया है कि जो मनुष्य इंद्रियों के वशीभूत है, भले ही वह वन वन विचरण करता रहे तो भी उसे बंधन का भय बना रहता है, क्योंकि वह मन तथा ज्ञानेन्द्रियों इन छह सपत्नियों के साथ रहता है। तो यहां पर वर्णन यह है कि अगर व्यक्ति जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है, तो वन में भी जाएगा तो भी उसको भय बना रहता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि 6 मई को हमने नरसिंह जयंती का उत्सव मनाया, तब से राधेशंभु प्रहलाद नरसिंह की कहानी और 7वां स्कंद ले रहे हैं, और हाल ही हम देख रहे हैं कि हिरण्यकश्यप का चरित्र जो है, हिरण्यकश्यप अजितेंद्रिय थे, है ना, अपने इंद्रियों को वश में कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनको लगा कि मैं तपस्या करूंगा, जाऊंगा तो मुझे और बल प्राप्त होगा, ऐसी अवस्था में तपस्या करने गए। हजारों 36,500 वर्ष तपस्या करने के बाद भी उनकी इंद्रिया वश में नहीं हुई। उन्होंने बड़ा लिस्ट ले दिया ब्रह्मा जी को, पहला बोला मुझे अमर बना दो, है ना, क्योंकि मैं अमर बन जाऊंगा तो मैं अनियंत्रित इंद्रियों के साथ, मन के साथ कुछ भी कर सकता हूं। ब्रह्मा जी नम्रता से बोले कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं। फिर भी उसको लगा कि अरे ब्रह्मा जी मुझे वर दे नहीं पाते, तो उन्होंने फिर अलग अलग वर मांगे कि मुझे ऐसा वर वैसा वर दे दो ताकि मैं अप्रत्यक्ष रूप से अमर बन जाऊंगा, है ना। तो ये जो व्यक्ति जितेंद्रिय है वो इस तरह का वर नहीं मांगेगा, उसको वो डरने की बात क्या है उसको, वो इतना साल तपस्या करने, वो इतना भी समझ नहीं आ सकता व्यक्ति को कि मैं आत्मा हूं और आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। लेकिन देवताओं की उपासना करने में व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वो इंद्रियों को हमेशा वशीभूत रहता है। वन में भी गए, वो इतने हजारों साल वन में रहे, फिर भी इंद्रियों को वश में कर नहीं पाए। लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने कुछ समय तक नारद मुनि से भक्ति के बारे में श्रवण किया और वो मां के गर्भ में ही आत्मज्ञानी बन गए, मां के गर्भ में आत्मज्ञानी बन गए। जैसे उनका जन्म हुआ आत्मज्ञानी पुरुष के रूप में ही जन्म हुआ ना। तो हम देखते कि 5 साल के बालक है, कहीं तपस्या करने नहीं गए, कुछ नहीं गए, केवल एक शुद्ध भक्त के द्वारा उन्होंने श्रवण किया, निर्भय बन गए। और यहां पर जो व्यक्ति वन में हजारों साल रहा लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों को वश में कर नहीं पाया, ये इसलिए हुआ क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे और प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। तो इंद्रिय और मन को वश करने का सामान्य मतलब सरलतम तरीका है कि हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। जो व्यक्ति भगवान की सेवा किए बिना मन और इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेगा वो शक्य नहीं है, अशक्य है। तो इसलिए देखो अमरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे लेकिन उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। सवय मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिं चकाराचुत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शन दशो तद्भुत्य गात्र स्पर्श अंग संगमम ग्रानंच तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्यारस नाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दासेन तु काम कामया तथा उत्तम श्लोक जनाश्रयारति। वो अमरीश महाराज हो या भगवान के कोई भी शुद्ध भक्त हो, वो अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते। जैसे अमरीश महाराज के बारे में बताया कि उन्होंने अपना मन भगवान के चरण कमल में लगाया, वाणी को भगवान के धाम की चर्चा में लगाया, कानों को भगवान की लीला के श्रवण करने में लगा, हाथों को मंदिर मार्जन करने में लगाया, आंखों को भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करने में लगाया, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपने नाक को भगवान के चरण कमल में अर्पित फूलों को सूंघने में लगाया और जीवा को उन्हें अर्पित तुलसी दल को ग्रहण करने में, अपने पांवों को तीर्थ स्थान की यात्रा करने में लगाया और अपने सिर को भगवान को प्रणाम करने में लगाया और अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा जो है उसी को पूर्ण करने में लगाया। तो इसी तरह जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने सारे मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, और जब सब मन और इंद्रिय भगवान की सेवा में लग जाता है तो मनुष्य निर्भय बन जाता है, क्योंकि तो इंद्रियों की तुलना सर्प से की जाती है, विषैले सर्प के साथ, और विषैला सर्प विष के कारण भयावह होता है, लेकिन एन के प्रकार विषैले सर्प के दांत से उसका विषैला दांत अगर निकला जाए तो फिर वो भयरहित हो जाता है, उससे डरने की बात नहीं होती है। तो हमारे हमारे में जो भोग करने की प्रवृत्ति है या इंद्रिया जो भोगोन्मुख मुखी होती है, भोग करने की प्रवृत्ति में रहती है, तो फिर वो भयावह रहती है। लेकिन इंद्रियों से भोग करने की प्रवृत्ति को अगर निकाला जाए और इंद्रियों को सेवोन्मुखी है ना, सेवा की ओर, सेवा भाव की ओर अगर हम लाया जाए तो फिर वही इंद्रिया हमें भय से मुक्त कर देती है। जो बद्ध जीव होता है, जो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, वो हर तरह से भौतिकता से आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है, हर इंद्रियों को भौतिक जीव में लगाता है, इसलिए भयग्रस्त रहता है, हमेशा उसको डर रहता है मृत्यु का, या जो उसने प्राप्त किया है उसका भोग करने का उसको हमेशा चिंता रहता है कि मेरा भोग कोई लेके ना जाए, है ना। लेकिन भगवान का भक्त एक ही जानता है कि मुझे एन के प्रकार भगवान की भक्ति में लगा रहना है, और वो जो भोगोन्मुखी इंद्रिया है वो सेवोन्मुखी करने का प्रयास करता है, और हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, इसलिए वो निर्भय रहता है। और भगवान की भक्ति इतनी महान है कि कभी कभी नवोदित स्टेज में नए नए भक्ति में हम लगे रहते हैं तो कभी कभी इंद्रिया पतन की ओर जाती है, क्योंकि या इंद्रिया कुछ गलतियां भी करती है, तो भगवान हमें वचन देते हैं कि अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अगर उसका पतन भी हो जाता है तो भी उसको चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो फिर से इंद्रियों को मेरी सेवा में लगा के लगाएगा और शुद्ध हो जाएगा। ऐसा वचन भगवान की भक्ति छोड़कर कहीं भी नहीं है। देवताओं की ही उपासना में लगा व्यक्ति अगर ठीक से सब कुछ करता है तो उसको लाभ मिलता है, जैसे ही थोड़ी उसकी इंद्रियां विचलित हो जाती है, उसका मन विचलित हो जाता है, तो देवता उनको तुरंत दंड दे देते। हजारों साल से वृंदावन में इंद्र की पूजा चली आ रही थी और इंद्र खुश थे, जैसे पूजा करते थे उनको जो भी वर्षा देना है या उनके ऊपर वर्षा तो सब जगह देते हैं, लेकिन वो खुश थे। एक साल भगवान इंद्र ने वृंदावन ब्रजवासियों को, नंद महाराज को बोला कि इस साल हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। अगर थोड़ी नम्रता अगर होती तो बोलते थे ठीक है एक साल नहीं किया, वहां नंद महाराज बोल भी रहे हैं ठीक है हम इंद्र का यज्ञ बाद में करेंगे, अभी कृष्ण बोल रहे तो अभी कर लेते, ऐसा नहीं बोला कि हम इंद्र यज्ञ करेंगे ही नहीं करके, लेकिन उतना भी उनको धीर नहीं रहा, नहीं नहीं छोटे बालक ने बोल दिया तो इन सब बड़े बड़े लोगों ने सुन लिया, अरे देखो मतलब कि भगवान बोलते कि मुह्यंती यत सूरया, है ना, लोग बद्ध भौतिकवादी लोग देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन देवता भी मोहित है। अभी भगवान की उम्र 7 साल की है पृथ्वी के, मतलब देवताओं स्वर्ग के 7 दिन, क्योंकि पृथ्वी का 1 वर्ष मतलब स्वर्ग के 24 घंटे, 1 दिन बीतता है उधर 24 घंटे बीतते हैं, तो पृथ्वी पर 1 वर्ष बीतता है, तो मतलब भगवान अभी 7 साल के हो गए हैं, स्वर्ग में केवल 1 हफ्ता बीता है, और 1 हफ्ते से हर रोज इंद्र भगवान की लीला का दर्शन कर रहे, अरे इस असुर को मारा तो पुष्प वृष्टि कर रहे, बादशाह हो गया, अभी हम लोग थोड़ा भयग्र अभी थोड़ा निर्भय बन गए, भगवान असुरों को मार रहे थे देवता खुश हो रहे थे, है ना। अभी देखो कि कृष्ण उनका कितना संकट दूर कर रहे थे, लेकिन जैसे कृष्ण ने बोला कि इस साल हमें इस बार हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, तो कृष्ण को इंद्र को समझ लेना चाहिए, अरे कोई साधारण बालक नहीं है, इन्होंने हमको कितने भय से मुक्त किया है, ठीक है इनकी इच्छा है ना, अलग अलग जगह तो हमारी पूजा होती रहेंगी, वृंदावन में, वैसे वृंदावन में मेरी पूजा होनी नहीं चाहिए, भगवान के समक्ष मेरी पूजा कैसे हो सकती है। तो महाराज जी बोलता ठीक है जो भी किया अच्छा किया, उधर से पुष्पोष कर देना चाहिए था, कृष्ण आपने बहुत अच्छा किया है कि नहीं, उसने पुष्पोष नहीं किया क्योंकि इंद्रिय भोग रहता है ना, जिस व्यक्ति के मन में इंद्रिय भोग है उनकी पूजा करने से हमारे इंद्रिय को कैसे जाएगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान का मन में इंद्रिय भोग की विषय वस्तु कभी नहीं रहती है ना। अनंत जीव अनंत काल से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी बारंबार बारंबार भगवान आते रहते हैं, अलग अलग विविध प्रकार के अवतार लेते रहते हैं और जीव को उनके ओर आकर्षित करते रहते हैं, है ना। भगवान के मन में कभी जीव के प्रति द्वेष आता ही नहीं, अरे तुम मेरी भक्ति छोड़ के इंद्रिय भोग कर रहे हो, ऐसा कभी द्वेष उनके मन में आता ही नहीं, क्योंकि उनमें इंद्रिय भोग करने की वासना ही नहीं है। हालांकि जब एक बद्ध जीव इंद्रिय भोग करके दुखी रहता है तो भगवान को उसके ऊपर कृपा आती है और हमेशा वो भगवान उनकी भक्ति में लाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इंद्र तुरंत नाराज हो गए और अभी एक व्यक्ति ने गलती की, कृष्ण ने गलती की, तो कृष्ण के साथ पंगा लेना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, पूरे वृंदावन के जितने भी प्राणी जितने वृंदावन वासियों को नष्ट कर दो। तो यह है भगवान की भक्ति करने का लाभ, भगवान की भक्ति करने का अनंत लाभ है। देवताओं की उपासना करने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर गलती हो गई कि दंड है। मैं पॉइंट यह बताना चाहता था कि भगवान की भक्ति करते करते कभी कभी हमारी गलतियां हो जाती है। शुरुआत के दिनों में हम नवोदित अवस्था में रहते हैं, भगवान माफ करते हैं, भगवान यार वहां जानते हैं कि छोटा बच्चा है, अनंत काल से भक्ति में नहीं था, अभी भी भक्ति में लगा है, तो गलतियां करेगा। तो भगवान की भावना हमेशा कृपा की भावना रहती है, मदद करने की भावना रहती है। कभी ऐसा हमने देखा नहीं कि कोई साधक भक्त है उसने गलतियां किया तो भगवान ने उसको भयंकर दंड दे दिया। हालांकि भगवान बोलते हैं कि गीता के छठवें अध्याय में कि कोई कोई योगी भ्रष्ट हो जाता है तो या तो स्वर्गलोक में जाता जाएगा और वहां वहां भोग करने के बाद यहां वापस आता है तो ब्राह्मण परिवार में या अमीर परिवार में जन्म लेगा। तो कितनी कृपा है, भोग करने की भी इच्छा रखता है तो भगवान उसका भोग भी पूरा करके उसको भक्ति मिलाते हैं, है ना। तो ऐसा केवल भक्ति में, भक्ति से प्राप्त हो सकता है। फिर भी अज्ञानी जीव भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, बोलते नहीं भगवान सब छीन लेंगे, इतने सारे नियम है, इतने कानून है। क्या नियम है, क्या कानून है, कुछ नहीं। कृत्रिम वातावरण बना दिया है आज, इसलिए लोगों को लगता है कि इतने नियम इतने कानून है, चाय कैसे छोड़ सकते हैं। कृत्रिमता है, 200 साल पहले चाय भारत में आई है, पहले था ही नहीं, इतना दूध प्रचुर मात्रा में था कि लोग चाय तो पीते ही नहीं थे, दूध ही पीते रहते थे। अभी लोगों को दूध नहीं मिलता इसलिए चाय पीते है ना। तो कृत्रिम वातावरण के कारण ऐसा लगता है। श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक वातावरण की निर्मित की है कि लोगों को अभी आध्यात्मिक जीवन भी सरल लगने लगा है। मंदिर में आते हैं, मंदिर का प्रसाद ग्रहण करते करते लोग बोलते हैं कि मंदिर के प्रसाद में प्याज लहसुन नहीं है क्या, बोलते बिल्कुल नहीं है, फिर भी इतना टेस्टी होता है। हम घर में प्याज लहसुन डालते हैं फिर भी इतना स्वादिष्ट प्रसाद बनता नहीं, मंदिर में प्याज लहसुन नहीं है फिर भी स्वादिष्ट बनता है, तो चलो हम भी घर में ट्राई करते। तो घर में ट्राई करते तो उनको अच्छा लगता है, क्योंकि प्रसाद भगवान को अर्पण करने के बाद स्वादिष्ट होता है। तो इस तरह प्रभुपाद जी ने एक बद्ध जीव के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से भक्ति किया जाए, है ना। उदाहरण प्रस्तुत करके मार्गदर्शन देके और सब तरह से परिस्थिति को निर्माण किया है। आज सारे संसार में प्रभुपाद जी ने भगवत भक्ति को आसान कर दिया है। तो भारत के बाहर लोग तो नियम पालन करते ही नहीं है, चारों नियम को ऐसे तोड़ा जाता है और उनको नियम बोलेंगे तो वो सुनने वाले नहीं है। प्रभुपाद जी शुरुआत के दिन में गए तो उनको बताया गया कि स्वामी जी आपके सारे नियम इधर नहीं चलने वाले, अगर आप जैसे नियम बताओगे वो बोलेंगे अमेरिकन गो बैक टू होम, आप अपने भारत में वापस चले जाओ। प्रभुपाद जी बोले मैं यहां पर अमेरिकन लोगों से सीखने नहीं आया हूं, मैं अमेरिकन लोगों को सिखाने आया हूं और आप मेरे सामने ही देखिए कि जैसे वस्त्र मैंने पहने हैं मैं अमेरिकन लोगों को पहनाऊंगा, ऐसे मेरा सर मुंडा हुआ है मैं उनके भी सर को मुंडाऊंगा, जैसे मैं नीचे बैठ के खाता हूं वो भी नीचे बैठ के खाएंगे, जैसे मैं हाथ से खाता हूं वो हाथ से खाएंगे, आप देख लो बस। बोले नहीं नहीं ये काटा चम्मच से खाने वाले लोग है, ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते, नहीं आप देखो बस। और प्रभु जी ने देखो केवल 11 साल में सारे विश्व में पाश्चात्य देश के लोगों को अपने जैसे बना दिया है ना। तो भगवान अपने भक्त का वचन पूरा करते हैं। प्रभुपाद ने इच्छा किया कि इन सब लोगों को भगवत भक्त बनना चाहिए तो सारे भक्त बन गए, सब जो मेरे जैसे काफी लोग प्रभुपाद जैसे। उस समय तो गृहस्थ लोग भी अपना सर मुंडवाते थे, आज भी हमारे इस्कॉन संस्था में कई सारे गृहस्थ भी सर का मुंडन करते हैं और सरल जीवन जीने के लिए। तो यह है। तो यहां पर भक्तिनाथ ठाकुर का उदाहरण देते प्रभु जी तात्पर्य में कि भक्तिनाथ ठाकुर एक निष्ठावान अधिकारी तथा गृहस्थ थे, फिर भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश को दूर दूर तक फैलाकर उन्होंने जो सेवा की वो अद्वितीय है। मतलब ये नहीं कि सन्यासी और ब्रह्मचारी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान सम आश्रम में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करते हैं। तो गृहस्थ जीवन में रह के भर भी रहकर भी व्यक्ति किस तरह कार्य कर सकता है, यहां पर हम देखते हैं भक्तिनाथ ठाकुर है ना। आज के लोग बोलते हैं कि बस हम लोग एक या दो बच्चे रखेंगे क्योंकि बहुत बहुत जिम्मेदार रहती है। भक्तिनाथ ठाकुर के 10 बच्चे थे और 10 बच्चे की जिम्मेदारी लेते हुए वो मैजिस्ट्रेट थे, फिर भी उनका जीवन इतना रेगुलेटेड था कि उनके जीवन में 24 घंटे में एक क्षण भी वो अपना देश नहीं करते थे, दुरुपयोग नहीं करते थे। पूरा उनका प्लान बना रहता था दिन भर में कि क्या क्या करना है, किस कब कब करना है ना। और सबसे कम समय था सोने के लिए और सबसे ज्यादा समय था भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऑफिस वर्क तो उनका 6 घंटे का था और कई बार उनको 6 घंटे से कम समय लगता था, क्योंकि इतने बुद्धिमान थे कि जो केस के लिए अंग्रेज वकीलों को एक एक हफ्ता लगता था वो 5 मिनट में सॉल्व कर देते थे। बहुत सारे वकील बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस भक्तिनाथ ठाकुर को दे देते, बोलते ये आप ले लो हमसे होगा नहीं। इसलिए उनका 6 घंटा जाता था, नहीं तो अगर उनके उनकी अगर केस उनको सॉल्व करना था तो आधे घंटे 1 घंटे में सॉल्व करके कम खामाप करते थे। उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा रहता था, वो इतना वर्कलोड देते थे कि इनको 6 घंटा में पूरा करना पड़े। तो अपना भौतिक जिम्मेदारी को भी वो अच्छी तरह से निभा रहे थे, अपने परिवार को भी अच्छी तरह से निभा रहे थे और सबसे ज्यादा समय वो भक्ति को देते थे। वो बहुत सारे भजन निर्माण करते थे ताकि लोगों को भगवान की भक्ति भजन के रूप में प्राप्त हो जाए, वो भगवान की भक्ति को गुनगुनाते रहे और अपने जीवन में उसका पालन करें। बहुत सारे पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया और बहुत सारे उन्होंने भक्ति वृक्ष प्रोग्राम भी चालू किए और भक्ति वृक्ष प्रोग्राम कैसे चलना चाहिए उसका डिटेल वर्णन भी दिया है। आज भी हमारे इस्कॉन में जो भी भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम चलता है उसका गाइडलाइंस भक्तिनाथ ठाकुर से आया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर गृहस्थ होकर भी उन्होंने बहुत भगवान की सेवा की और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना जीवन बिताया, एक आदर्श व्यक्तिमत्व है। और साथ ही साथ उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी इस भौतिक जगत में आध्यात्मिक जगत से लाया और उनके द्वारा फिर उनका जो कार्य था वो आगे बढ़ाया। तो इस तरह कहा गया है कि अगर इंद्रिया वश में है तो व्यक्ति वन में रहे या घर में रहे कहीं भी रहे वो सुरक्षित है, लेकिन अगर इंद्रिया वश में नहीं है तो भी कहीं भी रहे तो वो भयग्रस्त है। तो श्रीमद् भागवत में या भगवद गीता में जहां पर भी भगवान का संदेश है, बद्ध जीव को भगवान यही संदेश देते हैं कि हमें इंद्रिय और मन को वशीभूत करके नियंत्रित करके और किस तरह नियंत्रित करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लगाकर। तो भगवान की भक्ति में लगाकर अब हम अगर मन और इंद्रियों को वशीभूत करते हैं तो हम निर्भय है, क्योंकि बद्ध अवस्था में मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। गीता में भगवान बताते हैं कि मन के द्वारा हमें हमारा उद्धार करना चाहिए और पतन नहीं करना चाहिए। मन ही व्यक्ति का मित्र है अगर वो वश में है, और मन अगर वश में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मेरा मन तो बड़ा चंचल है, अस्थिर है, बलवान है और मैं वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान बोलते हैं हाँ मैं मानता हूं मन बड़ा कठिन है, लेकिन तुम्हें अभ्यास एनो तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, तुम्हें इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, भक्ति का अभ्यास, और फिर ये भौतिक जगत से वैराग्य प्राप्त करके अगर हम जिएंगे तो हम भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से जी सकते हैं और निर्भय बने रह सकते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रियव्रत महाराज को, तुम निर्भय बनो, तुम भगवान की भक्ति में लगे रहो और भगवान की भक्ति करते हुए राज्य करो, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह ब्रह्मा जी आश्वासन दे रहे हैं महाराज प्रियव्रत को। तो हम देखते हैं कि फिर महाराज प्रियव्रत ब्रह्मा जी का वचन सुनकर वो स्वीकार कर लेते हैं, आने वाले श्लोकों में उसका वर्णन होगा। तो ऐसा आज के श्लोक में संदेश है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सब भक्तों से चरणों में विनती करता हूँ कि मेरा भी मन और इंद्रिय हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे और जो हमेशा विचलित होती रहती है वो विचलन से कम हो जाए और आगे भगवान की भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति कर सकूं। गुरु और कृष्ण और वरिष्ठ भक्तों के वचनों को स्वीकार करके प्रगति कर सकते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी आपके सुंदर क्लास के लिए। प्रभु जी, जैसे आपने ये बताया भगवान में कोई भोग करने की इच्छा नहीं है, बट जैसे भगवद गीता में बताया 5.29 भोक्ता राम तपस्ताम, सो ऑब्वियसली दैट इज स्पिरिचुअल, सो इनफैक्ट गॉड इज अ सुप्रीम भोक्ता, राइट? सो ये कह सकते बट अल्टीमेट सेंस में ही इज द सुप्रीम भोक्ता।
हाँ, वो तो सुप्रीम भोक्ता है, परम भोक्ता है, लेकिन मेरा पॉइंट वहां था कि भगवान में कोई भौतिक भोग की इच्छा नहीं है, इसलिए वो जो बद्ध जीव जो भौतिक भोग करता है उनके प्रति उनका कोई द्वेष नहीं रहता है, लेकिन देवताओं के मन में भौतिक भोग भी है, इसलिए उनके भोग में अगर कोई बाधा आती है तो उनका कोई उपासक भी है तो उसके ऊपर भी दंड कर देते हैं। देवताओं के मन में भौतिक भोग की लालसा है, ऐसे भगवान के मन में कोई भौतिक भोग की लालसा नहीं है।
भगवान के लिए तो कुछ भी मटेरियल है ही नहीं एक तरह से देखा।
हाँ, हाँ।
So, there's nothing
परम भोक्ता है, वो तो उनका स्वभाव है, लेकिन परम भोक्ता होते हुए भी वो जीव की सेवा करना चाहते। अभी अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान बोल सकते थे ना, अर्जुन तुम सारथी बनो, मैं योद्धा बनता हूं, और देखो एक दिन में युद्ध समाप्त करके निकल जाते हैं, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं पारसारथी के रूप में। अरे सारथी, सारथी किसको, सारथी संस्कृत शब्द है, इंग्लिश में ड्राइवर, ड्राइवर किसको बनना अच्छा लगता है, कोई ड्राइवर बनेगा क्या? टाटा बिरला के कंपनी में कोई 40 साल सेवा करता है, अगर वो उसको पूछा गया तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी कार में खुद ड्राइविंग करते हुए मुझे घर में छोड़ो, जाएगा क्या? वो पॉसिबल नहीं बोलेगा, मेरी कार लेके जाओ भले, लेकिन मेरा ड्राइवर लेके जाओ, मैं नहीं आऊंगा। और वो भी किसको पता नहीं चलेगा, अगर वो ड्राइविंग करते हुए उसको घर में भी छोड़ा किसको पता चलेगा, उसका ग्लास भी वैसे ओपेक ग्लास रहता है, पता ही नहीं चलेगा, है ना? यहां पर भगवान सबके सामने अर्जुन के सारथी बने हैं, 64 करोड़ सैनिकों ने देखा, 33 करोड़ देवता ने देखा, और सारे संसार में उनका नाम पार्थ सारथी के रूप में है। हाँ, कोई भोग करने की लालसा नहीं है, है कि नहीं? अरे भगवान बोलते, अरे अभी चलो मैं युद्ध में आता हूं, और उसके पहले भगवान ने अकेले कृष्ण बलराम ने कई बार जरासंध का युद्ध किया, दोनों ही युद्ध कर देते, जरासंध को बोलते थे सब असुरों को पकड़ के लाओ, हम दोनों काफी हैं, 17 बार ऐसा किया, है ना? लेकिन फिर भी यहां पर अभी उनको वो भी कर सकते थे ना, नहीं क्या नहीं मिलेगा, इस बार अर्जुन का पांडव का नाम होने दो, हम थोड़ा पीछे बैक सीट में रहेंगे इस बार, है ना? तो ये भगवान का भाव है। तो जी आप कुछ बोलेंगे?